यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/3/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम
हरे शरणम 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 हरे शरणम
भाई आए बीच में गाड़ी क्रेस कर दी वो तेल आ जाने फाटक बंद हो गया सब देरी होगी भाई लोग आ जाओ नारायण 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 अब बोलो कोई बात कहो क्या बात बोलो सुनाओ नारायण 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 गीता में आया है अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति नित्य स तस्याहम सुलभ मैं अनन्य चेता अनन्य और अनन्यास्तिन्तियन्तो मां ये दनाथ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यता की बात आती है तो अपने लोगों में खास कमी रहती है अनन्य भाव की, मानो एक परमात्मा की तरफ ही हमारा विचार हो, इष्ट अपना ध्येय अपना लक्ष्य अपना मालिक अपना ईश्वर जो कुछ है एक परमात्मा ही है, ऐसा अनन्य भाव हो जाए उससे सिद्धि होती है। अपने परमात्मा को भी चाहते हैं संसार को भी चाहते हैं, ये दो बात होगी बीच में, अनन्यता नहीं है। तो संसार की चाहने से संसार मिल जाए ये बात नहीं है, पूरा विघ्न होगा और फायदा कुछ नहीं होगा। संसार चीज मिलने वाली है वो बिल्कुल मिलेगी बिना कहे बिना सुने बिना चाहे बिना प्रार्थना के स्वतः मिलने वाली मिलेगी, केवल परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगा सकते हैं, इसकी सिवाय और कोई वैसा मतलब नहीं है। संसार की चाहना से अगर संसार मिलता हो तो लखपति से नीचे कौन रहेगा, करोड़पति होंगे अरबपति होंगे। अगर चाहना से रुपये मिलते हो, चाहना से राज्य मिलता हो, चाहना से संपत्ति मिलती हो, चाहना से बेटा पोता मिलता हो, चाहना मात्र से मान सत्कार आदर प्रशंसा मिलती हो, तो इनसे कमी क्यों रखेंगे आप। परंतु संसार की चीज चाहना से नहीं मिलती, खूब आप ध्यान दें, संसार की चीज मिलने के लिए भीतर में चाहना हो और उसके लिए उद्योग हो पुरुषार्थ करे और फिर प्रारब्ध का संयोग हो, तीन चीज मिलती है तब वस्तु मिलती है। अगर प्रारब्ध का संबंध नहीं है तो व्यापार करते हैं धन के लिए हो जाता है घाटा, तो पहले से भी और नीचे चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि होता है और प्राप्त होता है तो काम करते हैं तो पैदा हो जाती है। जिसमें भी आजकल एक बहुत बड़ी गलती है कि झूठ कपट बेईमानी करते हैं, उससे चाहते हैं कि हमारा धन मिल जाएगा। भगवान में अनन्य भाव होना चाहिए, वो तो दूर रहा। आजकल अनन्य भाव हो रहा है झूठ कपट का, ध्यान देने की बात। झूठ बोलना, कपट करना, छल्स करना, जबरदस्ती करना, काला बाजार, इससे धन पैदा होगा, ये एक विश्वास हो गया है। सुनिए, झूठ कपट से धन मिलता है, ऐसा विश्वास हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात है। अनन्य भाव होना चाहिए भगवान पर, वो भाव हो गया पापों पर, पाप अन्याय इनसे, गर्भ गिराना, नसबंदी करना, ऑपरेशन कराना, लूप लगाना, तरह तरह से, इनसे हम सुखी हो जाएंगे। एक कसाई बने से सुखी कैसे हो जाएंगे? इसका एक विश्वास हो गया। मैं कभी कहता हूं इस विषय में तो वे क्या कहते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है। ऐसी बात आती मेरे पास सामने कि स्वामी जी जानते नहीं। अब बोलो हमारी बात कैसे लगेगी? अनजान आदमी हम तो नहीं मानते। कोई अनजान आदमी मेरे से कोई बात कहे तो जस्ती नहीं, बिल्कुल झूठी बात। ऐसे मेरी बात है जैसे कैसे स्वामी समझते नहीं। अब क्या करें बताओ? अनन्य भाव होना चाहिए भगवान पर, अनन्य, अन्य है ही नहीं हमारे। मानसो अभ्य विचारे न भक्ति योगी न सेवते, अभ्य विचारी भक्ति योग से मेरे सेवा करे। मई सानन्य योग न भक्ति अभ्य विचारिणी, मेरे में अनन्य योग से अभ्य विचारिणी भक्ति हो तो व्यभिचार से कैसे प्राप्ति होगी तत्व की? अभ्य विचारी भक्ति योग होना चाहिए। इसमें शंका करो, आपके मन में संदेह है वो डरो मत, भय मत करो, साफ साफ पूछो हृदय की बात, उसे खुलेगी। इस विषय में आप समझते हैं, वे स्वामी समझते नहीं, बस मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, मैं समझता नहीं हूँ, मैं विशेष जानता नहीं हूँ, ये तो मेरी दृष्टि हुई है बात, कि मैं बहुत विशेष नहीं जानता हूँ। परंतु पापों के विषय में कहता हूँ, उस विषय में मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, शास्त्र है, पुराण है, संत महात्माओं की वाणी है, संतों का अनुभव है, संतों के आचरण है, जो हेतु रहित जग जुग उपकारी, दो ही तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, उनकी वाणी के अनुसार कहता हूँ मैं। मेरी जानकारी कम है तो ठीक है, पर मैं कहता हूँ वो जानकारी भगवान की और महात्माओं की है, वो मेरी घर की नहीं है। वो बात सच्ची है, क्यों? उनके अनुभव की बात है। स्वार्थ में तो सगल जग माही, सुपने उपरो परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ में जो बोलता है वो आदमी ढंग से नहीं बोलता, स्वार्थी आदमी सब जगह सच्चाई और ठीक तरह से निर्विकार होकर के बोले ये संभव नहीं है, क्योंकि उसकी स्वार्थ की दृष्टि रहती है, तभी तो झूठ का बेईमानी ये ठीक लगती है। स्वार्थ की तरफ वृद्धि होते हैं, होने से ही तो झूठ कपट करते हैं, नहीं तो क्यों करते हैं। तो ब्रह्म प्रमाद लिप्सा करना पाठ ये दोष बताए वाणी में, लिप्सा होती है भीतर में लालसा, तो सत्य भाषण नहीं कर सकता वो, उसकी वाणी में दोष होता है तो उसका क्या हुआ प्रमाण नहीं होता, लोगों पर असर भी नहीं करता, वो प्रमाण नहीं, वो ठीक तरह से बोल नहीं सकता। स्वार्थ और कपट से ये मन भरे रहता है ना स्वार्थ बुद्धि से, तो बोल नहीं सकता ठीक, ये शास्त्रों का निर्णय हुआ है। वाणी में ब्रह्म प्रमाद लिप्सार करना पड़ ये चार दोष बताया है, चार दोष वाली वाणी सही नहीं होती, जिसके भीतर एक खास बात बताऊ, लिप्सा लेने की इच्छा है, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ न कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा है, वो ठीक ढंग से अच्छी तरह से नहीं बोल सकेगा, सत्यता को पालन नहीं कर सकेगा। तो ऐसे संत महात्माओं की वाणी है, उनको वचन है, व्यास आदि के संत हुए हैं, बड़े आचार्य हुए हैं, उनकी वाणी है, तो उनकी वाणी है वो लिप्सा रहित है, स्वार्थ रहित है। उस वाणी के अनुसार मैं कहता हूँ गीता जी की वाणी है, रामायण की है, महाभारत की है, उन संत महापुरुषों की वाणी है, उसके अनुसार कहता हूँ मैं, जहां तक बने मैं और बात नहीं कहता हूँ ऐसे जो गलत हो। तो वो वाणी सत्य है, अपने स्वार्थ के कारण से समझ में नहीं आती, स्वार्थ ही है ना, कहावत है इस संस्कृत में ना, अर्थी क्या है, अर्थी दोष न पश्यति, अर्थी होता है वो दोष को नहीं देखता, दोष दिखता नहीं उसको, जो स्वार्थी होता है उसको दोष दिखता नहीं। ममता रखता है दोष दिखता नहीं। आपको एक बात बताऊं, हम टट्टी जाते हैं और मल साफ करते हैं, उस समय हमें अंगुली के थोड़ी मैला लग जाए, वो लग जाए वो धो लेते हैं, गली में मैला पड़ा है उसको अंगुली लगा लेंगे, मैला तो एक ही है चाहे अपना हो पर अपने ममता कर रहे अपने मैले में, तो मैला इतना बुरा नहीं लगता, गली में पड़े मैले वो अंगुली के लिए देखो फर्क लगता है ना, जो ममता मेरा है ये होने से, ममता होने से, स्वार्थ होने से आदमी को दोष नहीं दिखता, मेरापना नहीं दिखता, दिखता नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। और भी ऐसे कई दृष्टांत है कि स्वार्थ होती है, अस्वार्थ होता है, ममता होती है, जिसे कुछ लेना होता है वहां ढंग से बात नहीं कर सकता आदमी, इसमें स्वार्थ भरा है ना। तो ये संत महात्मा हुए हैं अच्छे अच्छे, वो स्वार्थ रहित हुए हैं, हेतु रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, वो भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ दुनिया का हित करने वाले हैं, तो उनकी वाणी एक आंख में से माने तो फायदे की बात, साफ लिखा है भागवत में कि आंख मीच कर दो, धावन निमि लेवा नेत्रे न स्खले न पते दिह, धावन निमि लेवा नेत्रे, दोनों आंख मीच करके और दौड़ो तो न अखड़ता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि, ऐसा पंथा निष्कंटक, ये मार्ग कांटा नहीं, कचरा नहीं है, अखड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है, ऐसा मार्ग है, इसमें गलती नहीं है, क्योंकि कोई दोष है नहीं भीतर में, गलती कैसे होगी, अखड़ता पड़ता है, बीच में पत्थर हो, ऊंची नीची जमीन हो तो होता है, कांटा कचरा हो, ऐसा निष्कंठ का बनता बिल्कुल उसकी जाता। तो ऐसा मानकर भगवान पर विश्वास करो, एक विश्वास, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास चातक की तरह, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल, भगवान का भरोसा है। भगवान का भरोसा रख करके अगर आदमी भूखा मर जाए, मर भी जाने तो भी कल्याण है, झूठ कपट बेईमानी करके धनी बन जा तो भी पतन है, फायदा नहीं, नरक होगा, और खुद में शांति नहीं होगी। झूठ कपट बेईमानी से धन कमा लेने पर भी, वो धन होने पर भी शांति नहीं होगी, और कपट आदि नहीं करेगा, झूठ कपट नहीं करेगा, ठगी धोखेबाजी नहीं करेगा, तो उसकी मामूली चीज में भी निर्धक रहेगा, शेर की तरह गरजता है, निर्धक रहता है, क्योंकि हमने अन्याय किया ही नहीं, कोई पाप किया ही नहीं, भय किस बात का। अब बात देखने में आती है, आदमियों के आचरणों से, बातों से हमें मालूम होता है, और शास्त्र कहता ही है। तो एक आश्रय, एक बल, एक भगवान के चरणों के आश्रय हो, उसका ही बल हो, उसकी शरणागति हो, उसका आश्रय लेकर चलो, फिर लोक और परलोक दोनों ठीक हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, इससे फायदा होगा ही, निश्चित बात है। और आपके भी ये दृष्टि है, होगा ही, मैं समझता हूँ सत्संग करने वालों के, कि जो ऐसे हुए हैं उन संतों का विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है, उन पर लोग आश्रय करते हैं। महाभारत की कथा आती है, भीमसेन ने आकर कहा द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा को मैं मार दिया, नहीं माना, तय कर सभी मानूंगा। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा आता हाथी, ऐसा बोलो, कुंजरो नरोगा कुंजरो, ऐसा नहीं, मूल गए लोगों ने कहा तो ऐसा नरोगा कुंजरो, ऐसा करते कह दिया, ऐसा नहीं, साफ होया है, परंतु इतनी एक कपट कर ली बात कि हाथी कहना थोड़े नीचे शब्द में कहा, पहले जोर से कह दिया स्वच्छा महाथा हस्ती, ये कपट किया, जिससे विश्व का रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था, कीड़े आदि न मरे इसलिए रथ चलता था, उस दिन से गिर गया, फिर रथ ऊपर नहीं चला। और स्वर्ग में गए तो वहां पर भी लोगों ने कहा होता है अंगूठा गड़ गया, ऐसे कहते हैं, पर तो बाधा लगी है उनके इनमें भी, तो सुनने वालों के मन पर भी विश्वास, युधिष्ठिर कहते उसका है, दूसरा कहते क्यों नहीं होता है, दूसरा वो उतनी लगाव नहीं है, जबान पर काबू नहीं है कि ठीक ही बोल रहे, युधिष्ठिर महाराज ठीक बोलते थे, बैरी भी उन पर विश्वास करते थे। अभी जमाने में हरिप्रसाद जी कह रहे थे, रेलगाड़ी में बात हो रही थी जिसमें मैं सत्य बोलता हूँ, आयो तुम कहीं से जयदयाल, जयदयाल जी के रहते हुए उनके सामने लोगों में ऐसी बात प्रसिद्ध है, तुम जयदयाल जो सच बोलता है, तो सत्य बोलने वालों का आदर होता है, उस वाणी में ताकत होती है, झूठ कपट करने से ताकत नष्ट हो जाती है, शक्ति सामर्थ्य वो मिट जाती है। तो एक धारी रह भगवान में एक निष्ठ हो जाए तो कितना लाभ होता है। थोड़ी थोड़ी कठिनता आवे तो सह लो भाई, कठिनता आती है तो तपस्या है, सच्चाई के साथ काम करते हैं और उसमें कोई दुख आता है तो वो तपस्या है, धर्म पालन करते हुए कष्ट आता है वो तपस्या है। ये जो घाम सेना शीत सहना, हवा सहना, वर्षा सहना, बारे नंगा रहना, ये तपस्या है। परंतु सत्यवासन करना ये तपस्या ऊंची है। अपना धर्म ठीक पालन करते हुए कष्ट आकर पड़े, वो कष्ट जो बड़ी ऊंची तपस्या है, जानकर कष्ट सह रहा है ना, वो इतनी ऊंची तपस्या नहीं है। ऋषि के स्वर्गाश्रम की बात है, बड़ नीचे सत्संग होता था तो लोग सब वहीं भोजन ले आते थे, पुरुष तो पहले आ जाते, माता बहन और पीछे रसोई बना लेकर के आती थी देरी से, तो वहाँ कभी कभी भिक्षा मांगने वाले ज्यादा आ जाते, ज्यादा आ जाते, थोड़ी थोड़ी देते देते ही खत्म हो जाती, घर वालों को जिम्मा देते, उसकी भूखी रह जाती। तो सेठ जी ने कहा, मेरे सामने की बात है कि अभी भोजन सब दे दिया गया, रोटी दे दी गई, पास में रही नहीं, अब नरक में बना सकते ना आटा है ना कुछ, रसोई कोई है नहीं अभी, ऐसे में भूखा रह जाए, एक दिन शाम को जाकर भोजन कर लो, एक टाइम 12 महीनों की एकादशी के समान मात्रा में इसका, बोलो 12 महीना एकादशी करे, 24 होती है अधिक मास हो, 26 होती है एकादशी, उतना मात्रा हो जाए एक टाइम का, शाम को रोटी बना खा लो, क्योंकि आप साफ आया हुआ है ना, वो तपस्या की नहीं है, भगवान की दी हुई है, अचानक आई हुई तपस्या है, वह बड़ी ऊंची होती है। तो अपने धर्म का पालन करते हुए देते हुए भाई साधुओं को दे दो, भिक्षा दीक्षा दे दो, इसमें आई वापस, उसमें माध्यम बहुत बड़ा ऊंचा है। इस वास्ते सत्य का पालन करते हुए कष्ट आ जाए, उस कष्ट की बहुत विशेष महिमा है। अगर अन्य निभाव हो तो भगवान कहते तस्याम सुलभ अनन्य चेता सतसंग यो मां स्मृति नित्य सत्यम सुलभ। गीता भर में सुलभ शब्द एक बार ही आया है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, अनन्य भाव वाले के लिए योग में उनकी अप्राप्त की प्राप्ति करना और प्राप्त की रक्षा करना ये मेरा ठेका है। कितनी विशेष बात बताई है, ये बात है मैंने। तो अनन्य भाव है, एक निष्ठा है, एक परमात्मा में ही स्थिति है, और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, कोई नहीं, एक भगवान की ओर निष्ठा है। खाना पीना ऐसे ही मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, निर्वाह होगा, क्योंकि इसके लिए तो पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है, तो वो तो आवेगा ही। कर्मों का फल बुखार आता है तो निरोगता क्यों नहीं आवेगी, कर्मों का फल दरिद्रता है तो धनवत्ता क्यों नहीं आवेगी। ये तो है नहीं कि अच्छा अच्छा है वो तो नहीं आवेगा, बुरा बुरा वो आवेगा, ऐसा नहीं है। जैसा कर्म किया उसके अनुसार अच्छा बुरा दोनों फल होंगे। इस बात अच्छा फल पैदा किया कैसे जाएगा, वो तो आवेगा ही, बुरा फल आवेगा ही। अच्छे अच्छे धनी आदमियों को रोटी नहीं मिलती है, वैद्य मना कर देते हैं, पानी नहीं पीने देते, अथवा वह आम इसो पेट जलोदर पीर, वैद्य डॉक्टर बरन दे नहीं पीवन दे नीर, जलोदर हो जाए तो डॉक्टर वैद्य कहते पानी मत पियो, प्यास लगी है कि पानी नहीं, धन है लाखों करोड़ रुपए पास में है पर पानी नहीं पी सकते, फिर आफत आवेगी तो आवेगी, ये तो आवेगी जबरदस्ती आवेगी, तो वो आवेगी उसमें अगर तपस्या मानेगा हम तो अपने सत्य निष्ठा से अजय कर रहेंगे तो उसका बड़ा भारी महत्व है। अगर भूखा तो मरना ही पड़ेगा, तुस्सा मरना ही पड़ेगा, पर तो उसका उतना महत्व नहीं है जो अपने सत्य निष्ठा है उसी बराबर। परमात्मा स्वयं कहते हैं मैं सुलभ हूँ, कितनी विलक्षण बात है। तो अनन्य भाव एक भगवान में ही है, एक भगवान का एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास।
भगवान एक दफा दोबारा मैं आपका ही हूँ, मैं सिर्फ आपका ही हूँ, इसमें क्या सावधानी रखनी होगी?
दो बार नहीं कहना होगा ये सावधानी, इसमें एक बार कह दे दो बार क्या कहे,
इसमें क्या सावधानी रखनी होगी?
मैं कह रहा हूँ एक बार कहें दो बार की जरूरत नहीं है, ये सब देखनी होगी। जब एक बार कह दिया कि ये नाथ मैं आपका हूँ, दोबारा क्या कहे बताओ। एक बार में कमी रही तब तो दोबारा कहता है। सच्ची निष्ठा से सत्यता पूर्वक एक बार कह दे तो एक बार ही कहा रामायण में सकृदेव प्रपन्नायत, एक बार सकृत एक बार हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान कहते मैं अब यह कर देता हूँ, सावधानी में दूसरे किसी को हुई नहीं। सावधानी क्या रखे, दानी जी दे दिया ये चीज दे दी, अब सावधानी क्या रखे। सावधानी ये उनको अपनी नहीं मानेगी इसे कभी। जैसे मैं आपका हूँ तो शरीर को संपत्ति को अपने ममता वाली चीजों को अपनी न माने, अपनी है नहीं ये ले चुके। आपकी कन्या है ब्याह देने के बाद उस कन्या को अपनी नहीं मानते, ये तो आपका अनुभव ही है ना। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, आप जा रहे हैं तीर्थों में, वो कन्या भी आपके पास बैठी, वो कहे पिताजी मैं भी चलूंगी, मेरी माँ भी, मैं माँ साथ में चलूंगी। तो भाई पूछेंगे तेरे ससुर को पूछेंगे, बेटी आपकी है कन्या आपकी है, आपके लाड प्यार बहुत है, कन्या है आपकी, परंतु उसको दे दिया तो कन्या तो परावर्तन हो गया। उनको दो चार बार देते हैं क्या, एक दिन दे रहा हो तो दे दिया। अब उस कन्या को अपनी नहीं मान सकते, ऐसे सावधानी ये है कि अपना न माने, धन को, मन को, शरीर को, इंद्रियों को, प्राणों को, जीवन को, पदार्थों को, रुपया पैसों को, घर को, किसी को भी अपना न माने, ये सावधानी है। अपना कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान का है। नारायण 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 अनन्य चेता सरसम यो मान स्मृति नित्य तस्याम सुलभा।